पिछले अध्याय में ये देखा कि रुचिका और सुधीर की सगाई के दौरान अयान अपनी पत्नी जोया के साथ आता है और वेदिका जोया को वेद के लिए एक अच्छी दुल्हन बनने की सलाह देती है। समारोह में बच्चों के बीच एक छोटी सी झड़प होती है और वेद के मन में सवाल उठते हैं। रुचिका और सुधीर एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी पसंद से सगाई और शादी ना होने पर चर्चा करते हैं। वे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। वेद अवनी और मानवी को देखता है और उसके मन में शंका होती है। अयान अपने भाइयों से मिलता है और उसकी बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माया और रैना वेद की ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाने की योजना बनाती हैं। रुचिका और सुधीर स्टेज की ओर बढ़ते हैं और सारा जोया से चाचू के प्यार के बारे में बात करती है। अब आगे, रीना की बहन करीना जो पार्टी में घूम रही थी उसकी नज़र वेद के ऊपर थी। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह से इम्प्रेस कर ले, मगर वेद उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो फिर उसने घर के और लड़के जैसे दीपक की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि सुधांशु उम्र में उससे छोटा था। मगर उसका कोई काम नहीं बन रहा था, सभी ने उसे इग्नोर किया। उसकी रेप्यूटेशन ही ऐसी थी कि कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। रुचिका और सुधीर स्टेज पर जा चुके थे। वेदांत को छोड़कर सभी भाई बहन स्टेज के ऊपर थे। रुचिका की सहेलियां भी स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी थी। दीपिका सुधांशु उसकी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वेद सबको वहां मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब रिंग पहनने का टाइम आया तो बच्चों के साथ साथ घर के सभी बड़े भी ऊपर आ गए। पूरी फैमिली ऊपर पहुंच चुकी थी। रिंग्स पहनाई गई। रिंग एक्सचेंज होने के बाद घर के बड़े तो चले गए, मगर सुधीर ने अपने सभी भाई बहनों को वहीं रोक लिया था, क्योंकि रुचिका की सहेलियां सुधीर को छेड़ रही थी और उसने बचने के लिए अपने भाई बहनों का सहारा लिया। स्टेज पर काफी खुशनुमा माहौल हो चुका था। माया भी किसी बहाने से ऊपर आ गई उन सबसे मिलने के लिए। उसके हाथ में दो ग्लास थे। उसने सुधीर और रुचिका को बधाई दी और साथ ही वेद की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत देर से जहां पर खड़े हैं, आप जूस ले लीजिए। वेद ने उसके हाथ से ग्लास पकड़ लिया। वो घूंट भरने ही वाला था कि तभी अवनी वहां पर पहुंच गई। वेदांत का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। अंकल, अवनी ने उसे बुलाया। आ जाओ प्रिंसेस। वेदांत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और जो उसके हाथ में ग्लास था वो वहां साइड पर रख दिया। तुम रूठकर क्यों चली गई थी? वेद अवनी से पूछने लगा। मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं था। अंकल, मैं आपसे नाराज हूं, मैं ये बताने के लिए आई हूं। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, मगर इतनी भी क्या नाराजगी। वो उसे लेकर नीचे उतर आया था और एक टेबल पर बैठाकर उससे बात करने लगा। अंकल, आपने मेरी साइड क्यों नहीं ली? उसने नाराजगी से कहा। वेद ने उसे गले लगाया। ठीक है, जैसा तुमको होगा मैं वैसा ही करूंगा। वेद उसकी सारी बातें मान रहा था। वो लड़का जो किसी की नहीं मानता था, आज छोटी बच्ची जिसे वो मानता था कि उसका कोई रिश्ता नहीं, मगर वो उसे प्यारी लग रही थी, आखिर वो उसकी बेटी थी। थोड़ी देर बाद अवनी वेद के पास बैठी और बोली, ठीक है अब मैं चलती हूँ। वेद ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा? अवनी बोली, मेरी मॉम मेरे पास है लेकिन पापा नहीं है, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। वेद असल में उसके डैड के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अवनी ने इतना ही बताया और फिर कहा, अब मैं चलती हूँ, मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही होगी। इतना कहकर वो अवनी चली गई। सच में मानवी उसे ढूंढने लगी थी। वेद दूर से अवनी को देख रहा था। जब अवनी थोड़ी दूर वेद से अलग हुई तो मानवी ने उसे गोद में उठा लिया। तभी रैना वेद के पास आकर बैठ गई। उसने वेटर को इशारा किया कि टेबल पर ड्रिंक रखे। वेटर दो ग्लास रखकर चला गया। रैना बोली, आपके पास टाइम ही नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वेद ने ग्लास उठा लिया। रैना आगे बोली, तो फिर मेरे मॉडलिंग प्रपोजल के बारे में क्या सोचा आपने? मैंने आपको अपनी फोटोग्राफ्स भी भेजी थी। लगातार बात कर रही थी, तभी जैसे ही वेद ग्लास उठाकर घूंट भरने लगा उसकी नज़र मानवी पर पड़ी। मानवी ने अवनी को गोद में उठाया हुआ था और एक साइड पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। अवनी के बारे में जानने की उत्सुकता में वेद तुरंत मानवी से मिलने के लिए खड़ा हो गया। उसने ग्लास वहीं रख दिया और जाने लगा। रैना ने कहा, कम से कम जूस तो पीते जाइए। वेद ने जवाब दिया, फिर आता हूँ। ये कहकर वो मानवी की तरफ चल पड़ा, मगर जब तक वो वहां पहुंचा मानवी वहां से जा चुकी थी। माया और रैना ने पार्टी में पूरी कोशिश की कि किसी तरह वेद को नशीला जूस पिला दें। उन्होंने शराब में पाउडर मिलाकर उसे देने की योजना बनाई थी, मगर किस्मत से अवनी और मानवी की वजह से वेद वो जूस नहीं पी पाया। ये बात सच साबित हो रही थी कि उसकी जिंदगी की दो औरतें, एक उसकी बेटी और दूसरी उसकी पत्नी, दोनों ही उसे मुसीबत से बचाने का कारण बनी। सगाई पूरी हो चुकी थी, प्रोग्राम खत्म हो चुका था और सभी मेहमान जा चुके थे। आधी रात का समय था। अब लॉन में सिर्फ शेखर की टीम बची थी जो वहां का सामान क्लियर कर रही थी, क्योंकि सुबह वहीं ब्रेकफास्ट का इंतजाम होना था। कुछ मजदूर भी साथ थे और सब काम में लगे हुए थे। शेखर ने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा था। उसके दिल में मानवी के लिए भावनाएं थीं। उसकी अवनी से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसका बेटा शशांक भी मानवी को पसंद करता था, इसलिए उसने ठान लिया था कि प्रोग्राम के बाद वो मानवी को प्रपोज करेगा। जैसे ही उसकी पूरी टीम लॉन में आ गई, शेखर बीचों बीच पहुंचा जहां मानवी कुछ काम कर रही थी। अवनी तब तक सो चुकी थी और मानवी ने उसे कमरे में सुला दिया था। शेखर मानवी के सामने घुटनों पर बैठ गया।
उसने जेब से रिंग निकाली। मानवी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है। वो चौंक कर उसे देखने लगी। शेखर बोला, मानवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। तुम मुझे और मेरे बेटे शशांक को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें और अवनी को अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ एक अच्छा पति और पिता बनूंगा और अवनी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही रीता भागकर वहां आई और बोली, हाँ कह दो अवनी, मानवी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन आप मेरे बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं। शेखर मुस्कुराया और बोला, जो भी हो अगर कोई समस्या है तो हम मिलकर हल कर लेंगे। मुझे तुम पसंद हो और सबसे ज्यादा तुम्हारा मीठा स्वभाव मुझे अच्छा लगा है। रीता फिर बोली, हाँ कह दो मानवी। मानवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हम लोग कल बात करके फैसला करेंगे। उसने शेखर को सीधे सीधे मना भी नहीं किया। शेखर ने राहत की सांस ली और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सुबह बात करेंगे और मेरा फैसला हर हाल में हाँ ही होगा। ये कहकर वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन ये प्रपोजल सिर्फ शेखर की टीम ने ही नहीं देखा था, ऊपर से एक और इंसान सब देख रहा था, वेद। वेद की आंखों में गुस्सा भर गया। शेखर का मानवी को प्रपोज करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में आग सी भड़क उठी थी। वेद को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने रैना को फोन करके अपने कमरे में बुला लिया। फिर उसका मूड टेरेस पर जाने का बन गया, तो वो रैना को साथ लेकर ऊपर चला गया। रैना अपने साथ बियर की बोतलें लेकर आई थी। वो बैठकर बोतल खोलने लगी, जबकि वेद टेरेस पर टहलते हुए नीचे की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि शेखर मानवी को प्रपोज कर रहा था। ये देखकर वेद का मूड काफी खराब हो गया। जब वो टॉप फ्लोर से नीचे देख रहा था, तभी शेखर मानवी को प्रपोज करने लगा। उसकी टीम शोर मचाने लगी थी और इसीलिए वेद ने ऊपर से सब देख लिया।
ज्यादा तो साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर तक आवाज पहुंच रही थी। शेखर ने जब अवनी का नाम लिया तो वेद समझ गया कि अवनी मानवी की बेटी है, और ये भी कि शेखर मानवी को अवनी के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये सब ऊपर से देखकर वेद बेचैन हो गया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वेदांत कौन सा प्लान बनाएगा वेद के खिलाफ, क्योंकि माया और रैना दोनों ही कामयाब नहीं हो पा रही थी। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें और साथ में रेटिंग की दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुझे फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें।